गीता की छठी अध्याय के कर्म के मां कर्म योग है और फिर आगे जाकर के संयम मन को संयम रूप योग है। इस अध्याय को नाम ही अपने संयम योग है क्योंकि मन को वश में करने की बात है तो मन को नाम आत्मा है आत्म संयम योग नाम इस अध्याय को विश्वास है। और ध्यान की बात है तो ध्यान को जो प्रकरण है जिसको भी एक प्रकाश है उसे भी मन इंद्रियों को संयम की बात है। सारुक्य वहां कर्मयोग की बात है। कर्मयोग की बड़ी महिमा गाई है। अनाश्रित कर्म पदम कार्यम कर्म करोति है स संन्यासी च योगी च ने निर्गुणी न चात्प्रिय। जो कर्म के फल को न चाहता हुआ तो करने योग कर्मों का आचरण करता है वही सन्यासी और वही योगी है। जो अग्नि का जिन्होंने त्याग कर दिया या कर्मों का त्याग कर दिया ऐसा जो पुरुष है वो सन्यासी योगी नहीं है। भाव यह है केवल मात्र अग्नि का त्याग और केवल मात्र स्वरूप से कर्मों का जो त्याग है उसे त्याग मात्र से न तो सन्यासी समझा जाता है न योगी समझा जाता है न तो वो निष्काम कर्म योगी है और न वो शांत योगी है। कर्म योग इनका जो लक्षण लिखा जहाँ कसौटी लिखी कि यह लक्षण जिस कर्म है वो कर्म योगी है या यह लक्षण जिस में है वो शांत योगी ऐसी बात एक प्रकाश है कहीं भी नहीं बताई। अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति है स संन्यासी च योगी च न निर्गुणी न चात्प्रिय। जो कर्म के फल को न चाहता हुआ अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है वही सन्यासी और वही योगी है। न कि जो क्रिया के त्यागने वाला केवल मात्र क्रिया का त्याग कर दिया केवल मात्र कर्मों को छोड़ दिया वह सन्यासी योगी नहीं है। तो कर्म योगी का क्या लक्षण है इस अध्याय के चौथे श्लोक में बताया कि यदा ही निंद्रियार्थेषु न कर्म समुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ सर्वोच्यते। यदा माने जिस काल के मां ये साधक पुरुष न इंद्रियों के अर्थों में आशक होता है इंद्रियों के जो भोग है सब सत्ता स्वरूप स्तन आदि जो जितने संसार के भोग है उनमें जो ये आशक नहीं होता और न शास्त्र भी जो कर्म है उनमें आशक होता है क्रिया के मां भी आशक की अभिमुक्ति देने वाली नहीं है। कर्म के न करने के मां भी प्रीति नहीं होनी चाहिए और कर्म के करने में भी प्रीति नहीं होनी चाहिए। अनाशक्त भाव से कर्म करना सही उन्हें कर्म सुनुसज्जते कर्मों में ही आशक होता है। वह सारे संग्रहों का त्यागी उस योगारूढ़ कह जाता है उसकी योगारूढ़ संज्ञा है वो योग के ऊपर आरूढ़ हो गया। इस प्रकार का उपदेश जो कि भगवान अर्जुन को कहते हैं भाव यह कि तुम योग पर आरूढ़ हो। योगारूढ़ का लक्षण बताया यह लक्षण है वो योगारूढ़ है। सारे संकल्पों का त्यागी का मतलब ये नहीं कि पूर्णांग का भी त्याग कर दिया तो फिर कर्म होंगे कैसे। संकल्प का मतलब है सत्ता और आसक्ति को लेकर के जो कामना है उसका नाम संकल्प है। मन में ये निश्चय किया जाता है ये मुझको करना है तो इस प्रकार जो आसक्ति को लेकर के अर्जुन संकल्प करता है मन में निश्चय करता है कामना करता है उसका नाम है संकल्प। योगारूढ़ जो पुरुष है इसमें कोई प्रकार का संकल्प नहीं रहता। इस वास्ते जो सारे संकल्पों का त्यागी है वह युगार्म कहलाता है। योग के ऊपर आरूढ़ होना ही अपनी आत्मा का अपने आप करके कल्याण करना है। इसलिए उद्योग आत्मा 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 अवसाद ये आत्म आत्मा बंधु आत्मे भी पूरा आत्मा है। ये गीता की छठे जाकर पांच का श्लोक है, बड़ा महत्व का श्लोक है। इसका भाव है तू धृत आत्मना आत्मान, अपनी आत्मा का अपने आप के द्वारा उद्धार करना चाहिए, अपने आप का अपने आप के द्वारा कल्याण करना चाहिए। न अवसाद ये अपने आप का अपने आप के द्वारा पतन नहीं करना चाहिए। तो अपने आप का अपने आप के द्वारा उद्धार करना क्या है और अपने आप का अपने आप के द्वारा पतन करना क्या है, जिस बात को आप अच्छा समझते हैं उत्तम समझते हैं उसका तो आप पालन करते हैं, और जिस बात को आप बुरा समझते हैं उसका आप क्या करते हैं, तो आप अपने आप के द्वारा अपना आप उद्धार कर। मनुष्य को उचित है जिस बात को हम श्रेष्ठ समझें उत्तम समझें कल्याणकारक समझें उसका हम तत्परता के साथ पालन करें, और जिसको हम बुरा समझें शास्त्र विकृत समझें हानि का समझे उसका कतई चाक। ये अपने आप के द्वारा अपने आप का उद्धार करना है। इसके जो विपरीत करना है वो ही अपने आप के द्वारा अपने आप का पतन करना है। जिसको हम अच्छा समझते हैं भक्ति है वैराग है ज्ञान है और भी जो कलाकार है जो शास्त्र भी एक प्रकार से उत्तम क्रिया है उसका करना हम उत्तम समझते हैं, सच बोलना ब्रह्मचर्य का पालन करना आज अच्छा समझ करके हम नहीं कर सकते। ये अपने आप के द्वारा अपने आप का पतन करना, और जिस काम को हम बुरा समझते हैं झूठ कपट चोरी व्यभिचार हिंसा मद्यपान आदि जो जितने पाप कर्म हैं ऐसा समझ करके भी हम उसको करते हैं तो हम अपने आप के द्वारा अपने आप का पतन कर रहे हैं। हम अपने दृष्टि से गिर रहे हैं, शहर की दृष्टि से गिरते ही हैं पर अपने दृष्टि से ही गिर रहे हैं। जो आदमी खुद उसको बुरा समझे फिर उसका आसन करे तो उसके समान और मूर्ख और नीच कौन होगा। कोई आदमी आपके साथ में बुरा व्यवहार करे उसको आप बुरा समझते हैं, उस आदमी को भी आप नीच समझते हैं जो आपके ऊपर अत्याचार करता है, और वो ही बुरा व्यवहार दूसरों के साथ आप करें तो आपके सिद्धांत के अनुसार वो आपकी निष्ठा हुई कि नहीं हुई। जब निष्ठा हो गई तो आप अपने सिद्धांत से नीच बन गए, खुद ही बुरा। हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कोई हमारे साथ में बुरा व्यवहार करे हमारे ऊपर अत्याचार करे तो हमको उसे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको ऐसा बुरा व्यवहार किसी के साथ में नहीं करना चाहिए, किसी के अत्याचार नहीं करना चाहिए। कोई आपके ऊपर अत्याचार नहीं बल्कि सदव्यवहार करता है आपका उपकार करता है आपके मन के अनुकूल करता है आप सेवा करता है आपको सुख पहुंचाता है हर प्रकार से आपका हित करता है वो आपको अच्छा मालूम देता है ना तो अच्छा मालूम देता है। इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए तुम भी इसी प्रकार सबके साथ में अच्छा व्यवहार कर किस प्रकार से समझ करके जो व्यवहार करना है यही अपनी आत्मा के द्वारा अपने आप का पतन करना या उद्धार करना है। माने अपने सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना और बुरा व्यवहार किसी के साथ में नहीं करना, ये तो अपने आप के द्वारा अपने आप का उद्धार करना है। और अपने साथ के में कोई बुरा व्यवहार करे इस बात को समझ कर हम भी दूसरों के साथ में बुरा व्यवहार ये अपने आप का पतन करना। जो हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करे उसके साथ में हम अच्छा व्यवहार नहीं करें या उससे ये शिक्षा नहीं लेकर के उसके विपरीत ही व्यवहार करें तो ये हमारी निष्ठा है, ये अपने आत्मा का अपने आप के द्वारा खत्म करना है। आत्मी आत्मनिबंधु आत्मी पुरात्म, ये आत्मा ही तो अपने आप का बंधु है और आत्मा ही अपने आप का शत्रु। जो आदमी संसार के मौसम के साथ में बुरा व्यवहार करता है वह स्वयं आप ही अपने आप का शत्रु है। जो आदमी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है वह स्वयं आप ही अपने आप का मित्र है। शास्त्र के और महात्मा पुरुषों के कई वचनों के अनुसार चलना, अरविंद जो निषेध करते हुए उसके अनुसार न चलना, यही अपने आत्मा का अपने आप के द्वारा उद्धार करना है। अब इस तरह दूसरी बात आपको कही जाती है, जिसका शास्त्रों में विश्वास नहीं, महापुरुषों में विश्वास नहीं, परलोक में विश्वास नहीं, ऐसे जो नास्तिक पुरुष है उनका भी क्या उद्धार हो सकता है? तो परलोक में भलाई विश्वास मत हो, महात्माओं पर भलाई सबका विश्वास मत हो, शास्त्र पर भी भलाई सबका विश्वास मत हो, किंतु कम से कम अपनी आत्मा के ऊपर तो विश्वास होना चाहिए। यदि अपनी आत्मा के ऊपर सबका विश्वास हो जाए तो उसका भी उद्धार हो सकता है। ऐसे जो ईश्वर और महात्माओं को न मानने वाले जो नास्तिक पुरुष है उनका भी उद्धार हो सके है, इसके लिए आपको ये बताया जाता है। अपनी जो आत्मा हुई परमात्मा है, निष्काम भाव से, सम भाव से, पक्षपात रहित होकर के अपनी आत्मा से पूछना चाहिए। कोई भी काम हो उसके लिए अपनी आत्मा से पूछना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करना उत्तम है या व्यभिचार करना उत्तम है। वास्तव के बीच के मां अपनी आत्मा से पूछे कि वास्तव के बीच के मां सबसे बढ़िया बात क्या है, घटिया क्या है, तो यही आत्मा से आवाज आवेगी कि व्यभिचार के बराबर कोई खराब काम नहीं, उसे हानि हानि, बल्कि हानि तेज की हानि, बीड़ी की हानि, समृद्धि की हानि, इस लोक की हानि, परलोक की हानि, हानि हानि, और ब्रह्मचर्य के पालन से सब प्रकार से लाभ ही लाभ है। तो ब्रह्मचर्य का पालन आप दाएं तरफ में रखो और व्यभिचार को दाएं तरफ में रखो। अब दूसरा सवाल अपनी आत्मा से पूछो कि दूसरे का हर प्रकार से अनिष्ट करते रहना ये उत्तम बात है या दूसरे पर दया करके उसका हित करना, उसका उपकार करना, सेवा करना ये उत्तम बात है? तो भीतर से यही आवाज आएगी कि दूसरों का हित करना, सेवा करना, उपकार करना, सब पर दया करना, बात तो यही उत्तम है सर। तो बोलो इसको दाई तरफ में रख, और दूसरे का अनिष्ट करना, अहित करना, हर एक प्रकार से दूसरे के अनिष्ट के वास्ते खिला रहना ये बुरी से बुरी बात है, तो इसको बंद कर। तीसरी बात है, एक तो सत्य बोलना तो एक मिथ्या बोलना, जो बात जैसी देखी सुनी समझी वैसी की वैसी कहनी, न कम न ज्यादा, न भाव बदल करके, न छिपाव कर करके, इसको नाम सत्य। एक तो ये सच बोल, और दूसरे झूठ बोलना, रचना करके चाहे जिस प्रकार से जो न देखी न सुनी न समझी, और देखी सुनी समझी है किंतु बिल्कुल एक प्रकार से उसके विपरीत बोलू, मिथ्या, तो मिथ्या बोलना उत्तम है कि साथ बोलना? आत्मा से पूछो तो आत्मा से यही बात आती है कि सच बोलने से झूठ बोलने का शास्त्र तो कड़ी है कि सत्य बरोबर तब नहीं झूठ बरोबर पाप, जान के हृदय साथ है तान के हृदय आप, किंतु शास्त्र की बात को ध्यान में नहीं रखते थे, केवल मात्र अपनी आत्मा से, तो आत्मा से यही भाव पैदा होता है कि सत्य बोलना ही अच्छा, झूठ बोलना तो पाप है। इसी प्रकार से थी। माने जितनी बातें हैं अपने आत्मा से पूछता रहो, जो बात आपकी आत्मा से गवाही मिले कि अच्छी है उसको दई तरफ रखते जाओ, और जो आपकी आत्मा से यह निर्णय है ये बुरी बात है उसको बाई तरफ रखते जाओ। तो जिस बात को आप ठीक समझते हो, अच्छी समझते हो, सब प्रकार से लाभदायक समझते हो, उसका तो अक्षर से आचरण करो, उसका तो मन से, बुद्धि से, शरीर से, इंद्रियों से, सब प्रकार से उसके आचरण करने के लिए प्राण पर्यंत चेष्टा करो। और जिस बात को आपकी आत्मा करे कि बुरे काम है, निष्ठा का काम है, खराब काम है, उसका कठे त्याग कर। इस प्रकार के करने से आपकी आत्मा का सुधार होकर के उधार हो सकता है। तुमने अनुभव कर लिया कि एक आदमी हमारे साथ निष्ठा का व्यवहार करता है, हमारे पर अत्याचार करता है, ये बुरी बात है, कि तुमको अनुभव में आ गई, तुम उसको भोग चुके, तुम समझ चुके क्या बुरी बात है, तो फिर तुम उसी प्रकार दूसरों के साथ निष्ठा का व्यवहार करते हो, अत्याचार दूसरों पर करते हो, तो तुम स्वयं अपनी आत्मा से आप ही गिर गए। यही अपने द्वारा अपने आप का पतन करना, और उसको नहीं कर करके उसके साथ में जो अच्छा व्यवहार करते हो ये अपने आप का अपने आप के द्वारा उद्धार करना है। कोई भाई आपके साथ में बहुत बढ़िया व्यवहार करता है, सब व्यवहार करता है, और आप पर असर पड़ता है कि बात साथ हमारे साथ में इन्होंने बड़ा अच्छा व्यवहार किया, उसकी तुम प्रशंसा करते, तुम्हारा कर्तव्य हो जाता है कि तुम भी दूसरों के साथ में ऐसा ही व्यवहार करो। इस प्रकार समझ करके सबके साथ में जो अच्छा व्यवहार करना है ये अपने आप के द्वारा अपने आत्मा का उद्धार कर। इस मात्र व्यवहार करने वाले पुरुष के कैसे लक्षण हो जाएंगे ये भी इसमें बता। इसी प्रकरण में इसी अध्याय के मां 7-8 लोगों के श्लोक में जितात्मन प्रशांत से परमात्मा समाहित है शीतोष्ण सुख दुखेषु शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमान ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेन्द्रिय युक्त चुके योगी कमलोष्ठासन कांचन सूर्य निद्रा उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु सुखेषु पापेषु संबुद्धि विशिष्ट गये। कितना उनके दर्जा का व्यवहार है, सबके मां संभाव रखना, हर एक में जड़ चेतन सब पदार्थों में संभाव करना, ये महापुरुषों का लक्ष्य है। निष्काम कर्म योग के द्वारा जो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है उसमें ये सब लक्षण स्वाभाविक आ जाते, भाव ये की जितना आप मैंने प्रशांत करते हैं परमात्मा समाहित हो। जिसने अपने मन इंद्रियों को जीत लिया है वो जीता आत्मना, अंतःकरण इंद्रियां और शरीर इन सबको अपने कंट्रोल में जो कर लिया है ना, जो जीत लिया है वो जीता आत्मना प्रशांत करते अच्छी प्रकार से विक्षेप का अभाव करके जिसके चित्त में शांति प्राप्त हो गई है उस पुरुष को प्रशांत दर्शक कहते हैं। मन में जो नाना प्रकार का जो विक्षेप है इससे जो रहित है, रहित होने पर जो प्रसन्नता होती है उस प्रसन्नता का नाम शांति है। प्रकृष्ण शांत आत्मा जिसकी माने जिसका मन अच्छी प्रकार से थी विक्षेप से रहित हो गया है, शांत हो गया है, ऐसे पुरुष को प्रशांत आत्मा कहती परमात्मा सुमाय। परमात्मा के स्वरूप में जो समस्त प्रकार से थी आहित माने स्थित है, शीतोष्ण सुख दुख के सुख, शीत उष्ण सुख दुख, सर्दी गर्मी और सुख दुख तथा मानापमान और मान और अपमान जो समभाव है उसकी प्रशंसा। विषमता तो सबकी होती है, शीत उष्ण भी मन के अनुकूल हो तो उसमें प्रसन्नता होती है, आसक्ति होती है, मन के प्रतिकूल हो उसमें दुख होता है, द्वेष भाव। ऐसे ही प्रकार से सुख जो है सो अनुकूल है, दुख है सो प्रतिकूल है। किंतु जो योगी जो महात्मा पुरुष है उनके मतलब में समता आ जाती है, जैसा तो उनके लिए मान वैसा उनके लिए अपमान। ज्ञान विज्ञान तिरवत आत्मा, ज्ञान और विज्ञान में जिनकी आत्मा तिरवत है वो ज्ञान विज्ञान तिरवत आत्मा। परमात्मा के स्वरूप का, निराकार के स्वरूप का जो अनुभव है वो ज्ञान, और साकार निराकार सगुण निर्गुण भगवान के सभी स्वरूपों का अच्छे प्रकार से जो अनुभव उसका नाम विज्ञान। ऐसे परमात्मा के ज्ञान और विज्ञान में जिनकी आत्मा तिरपत है तो ज्ञान विज्ञान तिरपत आत्मा। और कूटस्व विचेन्द्रिय, कूट की मात्र जो अचल है, जैसी बुद्धि अचल है, चिर बुद्धि है, कभी वो किसी प्रकार से जैसी बुद्धि विचलित नहीं होती, उसको कूटस्व कहते। और विचेन्द्रिय विशेष बात है, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रियों पर विजय कर लिया, वो विचेन्द्रिय उच्चते योगी संलोष्टा संतान असम मान पत्र लोष्ट मान मिट्टी का ढेला, चौका देने पर जो बचा हुआ जो गोबर माटी का लोटा है उसको लोष कहते हैं, और लो का जो मैल है उसको लोष कहते हैं, जो फेंकने मिला है कोई काम नहीं आता। पत्थर में और लोष्ट में और सोने में जिनका सम था, उसके लिए जैसा सोना जैसी बुद्धि उसको तो संतोष का सुनता, ऐसा पुरुष जो है उसको युक्त इतनी उच्चती योग युक्त है ऐसा कहा गया। युक्त माने योगी, ऐसे पुरुष को योगी कहा गया। योगी कौन? तो जिसका प्रकरण है योगानंद का प्रकरण है, कर्म सुन सकते सर्व संकल्प सन्यासी योगा हृदय सर्वोच्च थे। जब किसी पदार्थ के बीच के मां किसी एक उद्योग के विषयों के बीच के मां आशक नहीं होता है, और न कोई क्रिया के मां आशक होता है, ऐसा सारे संकल्पों का त्यागी पुरुष योगा हृदय कहलाता है। योग पर आरूढ़ हो चुका है ऐसा जो योगी है उनकी अलग सूर्य निचार विदासी में मध्यस्थ जीवित बंधु को साधु सदृश पापी को संबुद्धि विशिष्ट थे। एक सूर्य पुरुष है बिना कारण से पर दया और प्रेम करने वाला, और मित्र जो एक दूसरे का उपकार कर रहा है पक्ष में दूसरे का हित चाह, वो मित्र उदासीन जो पक्षपात है, और मध्यस्थ माने कंस जीवन की पंचायत का मध्यस्थ, अध्यक्ष माने स्वाभाविक की बैर करने वाला, और ऐरी माने परस्पर बैर करने वाला, उससे बैर कर उससे बैर कर वो बैर, और स्वाभाविक की देश बुझी जाए कि वो देश ऐसा कुछ। और साधु पुरुष और बंधु अपना कुटुंबी और पापी पुरुष सबके मां जिनकी समबुद्धि है, इतने प्रकार के जो पुरुष है उनके मां जिनकी समबुद्धि है वह पुरुष श्रेष्ठ है। इसमें सूक्ष्म भेद बताया, देश करने वाला और बैर करने वाला। आप श्री के मां एक दूसरे को अनिष्ट करने की जो चेष्टा है, नित्य दिखाने की बद साथ में वो बैरी है। और एक ऐसे आदमी है कि कोई चाहे अपने से बैर करो, द्वेष करो, मत करो, बैर सबसे ही बैर करो, वो द्वेषी। इसी प्रकार से एक भीतर पर एक दूसरे को हित कर वो भीतर, और बदलो नेचा करके दूसरे के साथ में अच्छे व्यवहार करे, दया को व्यवहार करे, प्रेम को व्यवहार करे, वो सूर्य। तो सूर्य और मित्र और बैरी और द्वेषी पापी और पुण्यात्मा उदासीन और मध्यस्थ। उदासीन मन पक्षपात रही थे, मध्यस्थ पक्षपात रही थे, गुरु के फैसला करने वाला पंच, उदासीन को बिल्कुल समझ नहीं रखी, इस तरह से उदासीन और मध्यस्थ को भेद दिखलाए और मित्र और सूरज को भेद दिखलाए, बैरी और जैसी को भेद दिखलाए। पापी रे पुण्यात्माओं को तो सबको ही समझ आ रहा है, ये सुख समझे इन सब प्रकार के पुरुषों में जिनका संग भाव है वह सबसे बढ़कर सुख। ये महापुरुषों के लक्षण बताए, ये लक्षण उसमें स्वाभाविक ही आ जाते हैं। वही वास्तव में युक्त माने योगी है, योग पर आरूढ होने के बाद में उसमें ये सब लक्षण आ जाते हैं। इसमें परमात्मा के सगुण के ध्यान की बात और भगवान के निर्गुण के ध्यान की बात, यानी भगवान का जो सगुण साकार रूप है और दूसरा जो भगवान का निराकार निर्गुण रूप है, उनके ध्यान की बात भी इस ध्याय के नाम बतलाई है। इसलिए इस ध्याय का नाम आत्म संयम है। आत्मा माने जीवात्मा, आत्मा माने अंतःकरण। तो यह मन और बुद्धि के संयम की बात है, आत्मा का उद्धार की बात है। संक्षेप से आपको बताया जाता है, समंकाय स्लो गृहुन भारी न चलन सर संप्रेषणाशिका गण संदिश्य चालन लोक्यम प्रशांत आत्मा वित्त वीर ब्रह्मचारी व्रत मन संयम चितो युक्त आशित मत पर। ये इसी गीता की छठे अध्याय से 13 और 14 की शुरू है। ये बात करना तथा भी पवित्र देश हुए एकांत स्थान हुए वहां जाकर अपना आसन लगा करके उस पर बैठ कर साधन करना चाहिए, जिसके पूर्व में कहा गया खुद उसके ऊपर आसन लगा करके बैठे ध्यान के वक्त में, चाहे पद्मासन हो चाहे सिद्धासन हो या सत्सिकासन हो, वो आसन जो है उसको कैसे बैठे तुम्हें काया जो देह है इसको समान और ग्रीवा मान गड़ा इसको भी और मस्तक इनको समान कर सकते बैठे एक सूर्य माँ रीढ़ के हड्डी गोल की सिद्धि होनी चाहिए। क्योंकि जब निद्रा आती है तो गला झुक जाता है, कमर झुक जाती है, सीधा रहने से कभी नींद से नहीं आती। तो आलस के न्याय के कारण से ये भगवान ने आसन रखा। तो दृष्टि को नासिका से अग्र भाग से वहां रखे और इसके स्वर किसी दृष्टि नहीं करे और किसी चीज का अवलोकन नहीं करे, ये बैठने की विधि बताए। या निद्रा नहीं आती हो तो वो उसे बीच भी सके तो इसकी बात। प्रशांत आत्मा वित्त भी तो पुरुष कैसा होना चाहिए, साधक जो प्रशांत आत्मा मैंने जिनका अंतःकरण अच्छी प्रकार से शांत हो गया है, मैंने विक्षेप रहित हो गया है, उसको प्रशांत आत्मा कहते हैं। प्रशांत आत्मा प्रशांत आत्मा